السلام عليكم ورحمة الله. أزعم دادي ואיהכה נסתעין אהדנה סירועת ולמוסתקים סירועת אלדינה אנעמת עליהם غير المغضوب عليهم ولا الضالين وہ لوگ جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں ان کو یہ رجحان پیدا کرنا چاہیے کہ ابتدائی باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں. بعض دفعہ بعض بہت ہی بلند بانگ منصوبے بنانے والے اور بلند بانگ دعوی کرنے والے ابتدائی باتوں سے بے خبر رہ جاتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ان کی نظر میں ابتدائی ہیں در حقیقت بنیادی حیثیت رکھنے والی باتیں ہوا کرتی ہیں. اور جب تک بنیادیں قائم نہ ہوں کوئی بلند عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی. یہ کیسا قانون ہے جسے کوئی دنیا کا انجینئر کوئی ماہر فن نظر انداز نہیں کر سکتا. قوموں کی تعمیر میں, اور میری مراد مذہبی قومیں ہیں, مذہبی قوموں کی تعمیر میں دو باتیں بہت ہی بڑی اہمیت رکھتی ہیں, اور انہی کے گرد سارا فلسفہ حیات گھومتا ہے, یعنی بندے سے تعلق اور خدا سے تعلق. ان دونوں تعلقات میں اسلام نے بہت ہی وسیع تعلیمات دی ہیں اور بہت ہی بلند منصوبے پیش کیے ہیں, لیکن ان منصوبوں پر عمل تبھی ممکن ہے جب ان کے ابتدائی حصوں پر خصوصیت سے توجہ دی جائے اور صبر کے ساتھ پہلے بنیادیں تعمیر کی جائیں, پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے توقع رکھی جائے کہ ان بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر ہوں گی. جماعت احمدیہ کا جو موجودہ دور ہے یہ غیر معمولی اہمیت رکھنے والا دور ہے, اور جیسا کہ میں نے بارہا پہلے توجہ دلائی ہے, ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صدی سے دور ہو رہے ہیں, یعنی زمانے اور وقت کے لحاظ سے دور ہو رہے ہیں, لیکن عین ممکن ہے, بلکہ قرآن کریم نے اس کی معین پیشگوئی بھی فرمائی ہے کہ زمانے کی دوری پاٹی جا سکتی ہے, عبور ہو سکتی ہے, اگر اخلاق کو دور نہ ہونے دیا جائے, اگر اعمال کو دور نہ ہونے دیا جائے. وآخرین منہم لما یلحقو بہم, میں یہی تو پیغام ہے اور یہی تو خوشخبری ہے, جس کو پورا ہوتے دیکھ کر ہمارے ایمان پھر زندہ ہوئے ہیں. بس بہت ہی اہم بات ہے, ہم نے آخرین ہو کر قرآن کریم کی اس پیشگوئی کا مستاق بنتے ہوئے قطعی طور پر یہ دیکھ لیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ زمانے کی دوری کو اخلاق کی قربت کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے, اور نیک اعمال کے نتیجے میں زمانے کے فاصلے ماضی میں بھی طے ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی طے ہو سکتے ہیں. بس اس پہلو سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صدی کے قدم پر یہ دیکھیں کہ ہمارا قدم پچھلی صدی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں, اور ہمارا اخلاقی اور عملی فاصلہ کہیں بڑھ تو نہیں رہا. بس آگے بڑھنا دو طرح سے ہوگا, ایک زمانے میں آگے بڑھنا, وہ تو ایسی مجبوری ہے جس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں, اور ایک آگے بڑھنا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے قومیں بظاہر آگے بڑھتی ہیں لیکن بنیادی طور پر انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں, اخلاقی قدروں کے لحاظ سے انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ آگے بڑھنا تو تنزل کی علامت ہے, اس پہلو سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا بلکہ واپس جانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو سب سے بڑا معجزہ دکھایا, جو سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ کر کے دکھایا, وہ واپسی کا کارنامہ ہے, آگے بڑھنے کا کارنامہ نہیں. 1300 साल के फासले हायल थे, किस तरह एक ही जस्ट में आप उस जमाने में जा पहुंचे जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। बस हर सदी की जमानी जस्त के साथ हमें एक वापसी की जस्त भी लगानी होगी, और बड़े मुय्यन फैसले, बड़े कती फैसले के साथ ऐसा प्रोग्राम तय करना होगा कि जब हम वक्त में आगे बढ़ें तो अखलाकी और आमाली कदरों में वापस जा रहे हों। इस पहलू से इस दौर में जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो जमात के फैलाव के साथ साथ और भी मसाइल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जमात अल्लाह ताला के फजल से तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी रफ्तार हर तरफ पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस बड़ी जमातों में रफ्तार का फैलाव जहां मुबारक भी है वहां खदशात भी पैदा करने वाला है और फिक्रें भी पैदा करने वाला है। इसी तरह बड़ी जमातों में नस्ल फैलती है, तौलीद के ज़रिए जमातें बढ़ती हैं, इस पहलू से भी साथ ही तरबियती फिक्रें बढ़ने लगती हैं। बस जब मैंने मजलिस खुदामुल अहमदिया, अंसारुल्ला और लजना को तमाम मुल्कों में बरह रास्त अपने ताबे करने का फ़ैसला किया तो उसमें ये एक बड़ी हिकमत पेश नज़र थी, ताकि मैं इन मजालिस से बरह रास्त ऐसे काम लूँ जिनके नतीजे में खुदा ताला के फ़ज़ल और रहम के साथ हमारी तरबियती ज़रूरतें पूरी हो सकें। और खुदामुल अहमदिया और अंसारुल्ला और लजना माउल्ला महज़ ख़्वाबों के महल तामीर न करें, बल्कि छोटे छोटे ऐसे इकदाम करें जिनके नतीजे में गरीबाना सर छुपाने की गुंजाइश तो पूरी हो। ये वो ज़रूरत है जिसके पेश नज़र, जैसा कि मैंने बयान किया, मुझे ये इकदाम करना पड़ा। इस सिलसिले में आज मैं दो इब्तदाई प्रोग्राम जमात के सामने रखता हूँ और ये तीनों मजालिस खुसूसियत के साथ मेरी मुखातब हैं। इनको तंजीमी हदायात इंशाअल्लाह ताला पहुँचती रहेंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे आसान हिस्सों में इनके सुपुर्द अमली प्रोग्राम किए जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी बातें मेरे पेश नज़र हैं वो मैं आप सब के सामने पहले भी मुख्तलिफ हैसियतों में रखता रहा हूँ, आज फिर इन बातों में से बाज़ को दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। मज़हबी कौमें बग़ैर अखलाकी तामीर के तामीर नहीं हो सकती, और ये तसव्वुर बिल्कुल बातिल है कि इंसान बद अखलाक हो और बाखुदा हो। इसलिए सबसे अहम बात मज़हबी कौमों की तामीर में उनके अखलाक की तामीर है, और ये तामीर जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही बेहतर और उतनी ही आसान होती है। बस इस पहलू से लजना माउल्ला ने सबसे इब्तदाई और बुनियादी काम करने हैं, और यही इब्तदाई और बुनियादी काम उम्र के दूसरे हिस्सों में खुदाम के सुपुर्द भी होंगे और अंसार के भी सुपुर्द होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में मुख्तलिफ मजालिस को खुसूसियत से सरंजाम देनी है। सबसे पहली बात सच की आदत है। आज दुनिया में जितनी बदी फैली हुई है इसमें सबसे बड़ा खराबी का उनसुर झूठ है। वो कौमें जो तरक्की याफ्ता हैं, जो बज़ाहिर आला अखलाक वाली कहलाती हैं, वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक झूठ बोलती हैं, अपनों से नहीं बोलती तो गैरों से झूठ बोलती हैं। उनके फ़लसफ़े झूठ पर मबनी हैं, उनका निज़ाम हयात झूठ पर मबनी है, उनकी इक्तिसादियात झूठ पर मबनी है। गर्ज़े के अगर आप बारीक नज़र से देखें तो अगरचे बज़ाहिर इनके ज़िंदगी के कारोबार पर सिविलाइजेशन और आला तहजीब के मुलम्मे चढ़े हुए हैं, लेकिन फिल हकीकत इनके अंदर मरकजी नुक्ता जिसके गिर्द ये कौमें घूम रही हैं और इनकी तहजीबें जिनके ऊपर मबनी हैं वो झूठी है। लेकिन ये एक अलग बहस है। मुझे तो इस वक्त जमात अहमदिया के अंदर दिलचस्पी है और जमात अहमदिया के बच्चों के ऊपर खसूसियत के साथ मैं नज़र रखता हूँ, और मेरे नज़दीक जब तक बचपन से सच की आदत ना डाली जाए, बड़े होकर सच की आदत डालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और जैसा कि मैंने अपने बास खुतबात में तफसील से बयान किया है, सच बोलना भी मुख्तलिफ दराजात से ताल्लुक़ रखता है, मुख्तलिफ मराहिल से ताल्लुक़ रखता है, और कम सच्चा और ज़्यादा सच्चा और उससे ज़्यादा सच्चा और उससे ज़्यादा सच्चा, इतने बेशुमार मराहिल हैं सच के भी कि उनको तय करना बिलाखिर नबूवत तक पहुँचाता है। और सिद्दीक़ के मरहले से आगे सच्चाई का जो खुदा ताला ने मुकाम मुकर्रर फरमाया है उसी को नबूवत कहा जाता है। ऐसा सच्चा कि जिसका कोई पहलू भी झूठ की मिलौनी अपने अंदर न रखता हो। लेकिन ये हैं बड़े और ऊंचे और बुलंद मंसूबे जो कुरान करीम ने हमारे सामने पेश किए हैं, मन युत अल्लाह व रसूलहु फ़ाउलाइक मा अल्लज़ीना अन्नम अल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन अउलाए का रफ़ीक़ा। कितने अजीम शान और बुलंद मनसूबे हैं, लेकिन इनका आगाज सच से होता है, और कोई शख्स साले भी नहीं बन सकता जब तक वो सच्चा ना हो। इसलिए बहुत ही अहम बात है कि हम अपने बच्चों को शुरू ही से नरमी से भी और सख्ती से भी सच पर कायम करें, और किसी कीमत पर उनके झूठे मजाक को भी बर्दाश्त न करें। ये काम अगर माएँ कर लें तो बाकी मराहिल जो हैं कौम के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो सच्चे हों, अगर वो बाद में लजना की तंजीम के सुपुर्द किए जाएं या खुदामुल अहमदिया की तंजीम के सुपुर्द किए जाएं, उनसे वो हर किस्म का काम ले सकते हैं, क्योंकि सच के बगैर वो फाइबर मुयस्सर नहीं आता, वो ताना बाना नहीं मिलता जिसके ज़रिए आप बोझ डाल सकते हैं या मंसूबे बनाकर उनको उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। झूठी कौमें कमज़ोर होती हैं, उनके अंदर आला कदरें बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं हुआ करती। लेकिन ये एक बड़ा लंबा तफसीली मज़मून है, इसको आप फ़िलहाल नज़रअंदाज फरमाएं। ये यकीन रखें कि सच के बग़ैर किसी आला कदर की, किसी आला मंसूबे की तामीर मुमकिन नहीं है। इसलिए जमात अहमदिया में बचपन से ही सच की आदत डालना और मजबूती से अपनी औलादों को सच पर कायम करना नहायत ज़रूरी है, और जो बड़े हो चुके हैं उन पर इस पहलू से नज़र रखना और ऐसे प्रोग्राम बनाना कि बार बार खुदाम और अंसार और लजनात इस तरफ मुतवज्जे होती रहें कि सच्चाई की कितनी बड़ी कीमत है और कितनी बड़ी जमात को इस वक्त और दुनिया को जमात की विसादत से ज़रूरत है। दूसरा पहलू तरबियत का, नरम और पाक जुबान इस्तेमाल करना और एक दूसरे का अदब करना। ये भी बज़ाहिर छोटी सी बात है, इब्तदाई चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, वो सारे झगड़े जो जमात के अंदर निजी तौर पर पैदा होते हैं या एक दूसरे से ताल्लुकात में पैदा होते हैं, उनमें झूठ के बाद सबसे बड़ा दखल इस बात का है कि बाद लोगों को नरम खुई के साथ कलाम करना नहीं आता, उनकी ज़ुबान में दृष्टगी पाई जाती है, उनकी बातों और तर्ज में तकलीफ़ देने का एक रुझान पाया जाता है जिससे बसा औक़ात वो बाखबर ही नहीं होते। जिस तरह कांटे दुख देते हैं और उनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह बाल लोग रूहानी तौर पर सूख के कांटे बन जाते हैं और उनकी रोजमर्रा की बातें चारों तरफ दुख बखेर रही होती हैं, तकलीफ दे रही होती हैं और उनको खबर ही नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे अगर मर्द हों तो उनकी औरतें बेचारी हमेशा जुल्मों का निशाना बनी रहती हैं, और अगर औरतें हों तो उन मर्दों की जिंदगी अजीर्ण हो जाती है। ये बात भी ऐसी है जिसको बचपन से ही पेश नज़र रखना ज़रूरी है। घर में बच्चे जब एक दूसरे से कलाम करते हैं, अगर वो आपस में अदब और मोहब्बत से कलाम ना करें, अगर छोटी छोटी बात पर तू तू मैं हो और झगड़े शुरू हो जाएं, तो आप यकीन जानें कि आप एक गंदी नस्ल पीछे छोड़कर जाने वाले हैं। एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जिस जो आइंदा जमानों में कौम को तकलीफों और दुखों से भर देगी, और आप जिम्मेदार हैं इस बात के, जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चों ने एक दूसरे से ज्यादतियाँ की, सख्तियाँ की, बदतमीजियाँ की, और आपने उनको अदब सिखाने की तरफ कोई तवज्जो ना की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे बच्चे फिर माँ बाप से भी बदतमीज होते चले जाते हैं, और माँ बाप जिनके जल्द बच्चों की ताज़ीर के लिए हाथ उठते हैं, उनके बच्चों के फिर उन पर हाथ उठने लगते हैं। इसलिए रोज़मर्रा के हुस्ने सलूक और अदब की तरफ गैर मामूली तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये भी घरों में बचपन ही में अगर तरबियत दे दी जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही आसानी के साथ ये काम हो सकते हैं। लेकिन जब ये अखलाक ज़िंदगी का जुज़ बन चुके हों, जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि स्कूल में जाएं तो क्लासों में ये लोग, ये बच्चे बदतमीजी के मुजाहरे करते, शोर डालते, एक दूसरे को तकलीफ़ें पहुँचाते और असातिज़ा के लिए हमेशा सरदर्दी बने रहते हैं। यही बच्चे जब अतफालुल अहमदिया के सुपुर्द हों या लजनात के सुपुर्द बच्चियों के तौर पर हों, तो वहाँ एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इन बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है, और हमने जो तरबियत के बड़े बड़े काम करने हैं वो हो ही नहीं सकते अगर इब्तदाई तौर पर ये मादा तैयार ना हो। मादा तैयार हो तो फिर उसके ऊपर जितना काम आप करना चाहें, जितना चाहें उसको सजाना चाहें उतना सजा सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी ही नरम ना हो और उसके अंदर ढलने की ताकत ना हो तो फिर कैसा बड़ा सन्ना ही क्यों ना हो, वो उस मिट्टी को खूबसूरत शक्लों में तब्दील नहीं कर सकता। तो इस पहलू से नरम कलामी, अदब और एहतराम के साथ एक दूसरे से सलूक करना ये बहुत ही ज़रूरी है। बड़े बड़े ख़तरनाक झगड़े इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो ना देने के नतीजे में पैदा होते हैं, और चूंकि मुश्तक सारी दुनिया से मुख्तलिफ निज़ा कभी बिलवास्ता कभी बिलावास्ता पहुँचते रहते हैं, इसलिए मैंने महसूस किया है कि जब तक बचपन से हम अपनी औलाद को ज़ुबान का अदब नहीं सिखाते, उस वक्त तक आइंदा बड़े होकर कौम में उनके किरदार की कोई ज़मानत नहीं दे सकते, और उनकी बदखुलकियाँ बाज़ नहायत ही ख़तरनाक फसाद पैदा कर सकती हैं, जिनके नतीजे में दुख फैल सकते हैं, जमातें बढ़ सकती हैं, मुनाफ़क़तें पैदा हो सकती हैं, सिलसिले से इन्हराफ के वाक़यात हो सकते हैं। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोग मामूली समझते हैं, जिनके ऊपर आइंदा कौमों की तामीर होती है और उसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ वुसत हौसला है। बचपन ही से अपनी औलाद को ये सिखाना चाहिए कि अगर थोड़ी सी तुम्हें किसी ने कोई बात कही है या कुछ तुम्हारा नुकसान हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना हौसला बुलंद रखो। और ये हौसले की तालीम भी ज़ुबान से नहीं बल्कि इससे बढ़कर अपने अमल से दी जाती है। बाज़ बच्चों से नुकसान हो जाते हैं, कोई घर का बर्तन टूट गया, कोई स्याही की दवात गिर गई, खाना खाते हुए पानी का गिलास उलट गया। और इन छोटी छोटी बातों पर मैंने देखा है कि माँ बाप बड़ा फरोख्ता होकर बच्चों के ऊपर बरस पड़ते हैं, उनको गालियां देने लग जाते हैं, चपेड़े मारते हैं और कई तरह की सजाएं देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जहाँ जिन कौमों में या जिन मुल्कों में अभी तक उनका एक तबका ये तौफीक रखता है कि वो नौकर रखे, वहाँ नौकरों के साथ तो इससे भी बहुत बढ़कर बदसलूकियाँ होती हैं। तो उन जगहों में जहाँ नौकरों से बदसलूकियाँ हो रही हों, उन घरों में जहाँ बच्चों से बदसलूकियाँ हो रही हों, वहाँ आइंदा कौम में बड़ा हौसला पैदा नहीं हो सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अपने बच्चों की तरबियत की वो महज कलाम के ज़रिए नहीं की, बल्कि आला अखलाक के इजहार के ज़रिए की है। हज़रत मुस्लिम मौऊद उस जब बच्चे थे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही कीमती मकाला जो आपने तहरीर फरमाया था और उसको तबात के लिए तैयार फरमाया था, वो आपने खेल खेल में जला दिया और सारा घर डरा बैठा था कि अब पता नहीं क्या होगा और कैसी सजा मिलेगी। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा और तौफीक दे देगा। हौसला अपने अमल से पैदा किया जाता है, और वो माँ बाप जिनके दिल में हौसले ना हों वो अपने बच्चों में हौसले पैदा नहीं कर सकते। और नरम गुफ्तारी का भी हौसले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। छोटे हौसले हमेशा बदतमीज़ ज़ुबान पैदा करते हैं, बड़े हौसलों से ज़ुबान में भी तहमुल पैदा होता है और ज़ुबान का मेयार भी बुलंद होता है। बस महज ज़ुबान में नरमी पैदा करना काफ़ी नहीं जब तक उसके साथ हौसला बुलंद न किया जाए। और वसी हौसलगी जमात के लिए आइंदा बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इसके गैर मामूली फ़वायद हमें अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी नसीब हो सकते हैं। लेकिन वसी हौसलगी का ये मतलब नहीं कि हर नुकसान को बर्दाश्त किया जाए और नुकसान की परवाह न की जाए। ये एक फ़र्क है जो मैं खोल कर आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस के दायरे के अंदर इसको समझकर इन दोनों बातों के दरमियान तवाज़ुन करना पड़ेगा। नुकसान एक बुरी चीज़ है, अगर नुकसान का रुझान बच्चों में पैदा हो तो उनको समझाना और अक़ल देना और ये बात उनके ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ताला ने जो चीज़ें पैदा फरमाई हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं और हमें चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज़ कभी नुकसान ना हो। वुज़ू करते वक्त पानी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मुंह हाथ धोते वक्त पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बर्तन धोते वक्त पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कपड़े धोते वक्त पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक पानी ही को ले लें तो आप देखेंगे कि हमारी कौम में और बास तरक्की याफ्ता कौमों में भी नुकसान का कितना रुझान है। मैंने देखा है बाल लोग टूटियां खोल कर खड़े हो जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि गर्म पानी या ठंडा पानी जैसा भी है वो अक्सर ज़ाया हो रहा है और बहुत थोड़ा उनके काम आ रहा है। हालांकि ये पानी खुदा ताला की ऐसी नेमत है जिसकी कदर करना ज़रूरी है, और क़ता नज़र इससे कि इससे आपका माली नुकसान क्या होता है या कौम का मजमूई नुकसान क्या होता है, ये बात नाशुक्री में दाखिल है कि किसी नेमत का की बेकदरी की जाए। तो हौसले से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि नुकसान की परवाह ना करने की आदत डाली जाए। ये दो बातें पहलू पर पहलू चलनी चाहिए। हौसले से मुराद ये है कि अगर इत्तेफाकन किसी से कोई नुकसान पहुंचता है तो उस पर बर्दाश्त किया जाए और उसे कहा जाए कि इस किस्म की बातें होती रहती हैं, और जिनके हौसले बुलंद हों वो फिर बड़े होकर बड़े नुकसान बर्दाश्त करने के भी ज्यादा अहल हो जाते हैं। बाज दफा आफात समावी पड़ती हैं और देखते देखते इंसान की फसलें तबाह हो जाती हैं। जिनको छोटी छोटी बातों का हौसला ना हो वो ऐसे मौकों के ऊपर फिर खुदा से भी बदतमीज हो जाते हैं और बेहौसलगी के साथ एक खुदगर्जी का रिश्ता ऐसा गहरा है कि उस खुदगर्जी के नतीजे में हर दूसरी चीज अपनी ताबे दिखाई देने लगती है। अगर वो फायदा पहुंचा रही है तो ठीक है, जरा सा भी नुकसान किसी से पहुंचे तो इंसान हौसला छोड़ बैठता है, और जब बंदों से बेहौसलगी शुरू हो तो बिलाखिर खुदा से भी इंसान बेहौसला हो जाता है। इसीलिए हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये गुर समझाया कि मल ला यशकुरुन्नासा ला यशकुरुल्लाहा, या मल लम यशकुरुन्नासा ला यशकुरुल्लाहा। जो बंदे का शुक्र अदा ना करना सीखे वो खुदा का कहाँ कर सकता है, जो बंदे का नहीं करता वो खुदा का भी शुक्र नहीं करता। ये जो गहरा फलसफा है ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। हौसले पर भी इसी बात का इतलाक़ होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मामूली बात नहीं, बड़े होकर इसके बहुत बड़े बड़े नतायज पैदा हो सकते हैं। वो नुकसान जिसमें इंसान बेख्तियार हो उस पर सब्र का नाम हौसला है, लेकिन नुकसान की तरफ तबीयत का मैलान होना ये हौसला नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, जहालत है, और बाद सूरतों में ये खुद नाशुक्री बन जाता है। इसलिए बच्चों को जब हौसला सिखाते हैं तो चीज़ों की कदर करना भी सिखाएं। जैसा कि मैंने बयान किया है, अब यहाँ भी इंग्लिस्तान में मैंने देखा है पानी का नुकसान और गर्मी का नुकसान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आम कौम में पाई जाती हैं, कोई परवाह नहीं होती। हमारे खुद पाकिस्तान से यहाँ आके जो बसने वाले हैं बेज़रूरत हीटर जलाते हैं, बेज़रूरत आग जलती रहती है, उसके ऊपर पतीली हो या ना हो औरतें परवाह नहीं करती, बेज़रूरत पानी बहते रहते हैं, उससे बहुत कम में इंसान अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। और कौमी तौर पर जो फ़ायदा है वो तो है, लेकिन बुनियादी तौर पर हर इंसान को इन बातों की तरफ तवज्जो देने के नतीजे में अपनी अख़लाक़ी तामीर में मदद मिलती है और बच्चों की तरबियत में इससे बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। बिजलियों को देख लीजिए, मैंने देखा है कि घरों में बेवजह बिजलियां जलती छोड़ जाते हैं लोग, रेडियो ऑन किया है या टेलीविज़न ऑन किया है तो कमरे से चले गए और खाली कमरों में बिजलियां भी जल रही हैं, रेडियो ऑन है या टेलीविज़न ऑन है। कई दफ़ा मैं अपने घर में अपने बच्चों से कहा करता हूँ कि हमारे घर जिन हैं, क्योंकि मैं कमरे में गया वहाँ बिजली जल रही थी और टेलीविज़न चला हुआ था, मालूम होता है कोई ऐसी गैरमरी मखलूक है जो आके ये काम कर जाती है। इंसानों को तो जेब नहीं देता कि इस तरह बेवजह खुदा की नेमतों को ज़ाया करें। तो बारहा ये देखा है तरबियत करनी पड़ती है, लेकिन सब्र के साथ, बदतमीजी के साथ नहीं। और ये जो दो बातें हैं ये इकट्ठी चलेंगी, यानी हौसले की तालीम और नुकसान से बचने का रुझान, किसी किस्म का कौमी नुकसान ना हो, उसके नतीजे में आपके अंदरूनी तौर पर भी आपकी ज़ात को आपके ख़ानदान को फवायद पहुँचेंगे, और बड़े होकर तो इसके बहुत ही अजीमशान नतायज निकलते हैं। वो लोग जिनको छोटे छोटे नुकसानों की परवाह नहीं होती, जब वो तजारतें करते हैं तो अपनी तरफ से वो हौसला दिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा वो नुकसान हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम और आगे कमा लेंगे। ये जहालत की बातें हैं। अच्छे ताजिर वही होते हैं जो छोटे से छोटा नुकसान भी बर्दाश्त ना करें। और हौसले का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपने नुकसान को आंखों के सामने होता देखें और रोकने की कोशिश ना करें। चौथी बात, गरीब की हमदर्दी और दुख दूर करने की आदत है, ये भी बचपन ही से पैदा करनी चाहिए। जिन बच्चों को नरम मिजाज माएँ गरीब की हमदर्दी की बातें सुनाती हैं और गरीब की हमदर्दी का रुझान उनकी तबीयतों में पैदा करती हैं, वो खुदा ताला के फजल के साथ मुस्तकबिल में एक अजीम शान कौम पैदा कर रही होती है जो खैरा उम्मतिन बनने की अहल हो जाती है। लेकिन वो माएँ जो खुदगर्जाना रवैया रखती हैं और अपने बच्चों को उनके अपने दुखों का एहसास तो दिलाती रहती हैं, गैर के दुख का एहसास नहीं दिलाती, वो एक खुदगर्ज कौम पैदा करती हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। इसलिए इंसानी हमदर्दी पैदा करना ना सिर्फ नहायत ज़रूरी है बल्कि इसके बगैर आप अपने उस आला मकसद को पा नहीं सकते जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। कुरान करीम फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो जिसको खुदा ताला ने बनी नौ इंसान के फवायद के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी का कौमी मकसद खो देंगे अगर हम बचपन ही से अपने औलाद को लोगों की हमदर्दी की तरफ मुतवज्जे ना करें और अमलन उनको उनसे ऐसे काम ना लें या उनको ऐसे काम ना सिखाएं जिसके नतीजे में गरीब की हमदर्दी उनके दिल में पैदा हो और उसकी लज्जत याबी बचपन ही से शुरू हो जाए। लज्जत याबी से मुराद मेरी ये है कि अगर किसी बच्चे से कोई ऐसा काम करवाया जाए जिससे किसी का दुख दूर हो तो उसको एक लज्जत महसूस होगी, अगर महर ज़ुबानी बताया जाए तो वो लज्जत महसूस नहीं होगी। और जब तक नेकी की लज्जत महसूस ना हो उस वक्त तक नेकी दवाम नहीं पकड़ा करती, उस वक्त तक ये महज नसीहत की बातें हैं। इसलिए इसके दो पहलू हैं, एक तो आप अपने बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाकर सबक आमूज नसीहतें करके या सबक आमूज वाकयात सुनाकर गरीबों की हमदर्दी की तरफ मायल करें, दुखों के दुख वालों के दुख दूर करने की तरफ मायल करें। हर वो शख्स जो मुसीबत ज़्यादा है किसी तकलीफ़ में मुबतला है ये एहसास पैदा करें कि उसकी मुसीबत दूर होनी चाहिए, उसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा करें, बल्कि इसके साथ मौके भी मुहैया करें। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसे मौके मुयस्सर नहीं आते यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ अमीरों और गरीबों के दरमियान फासले बहुत हैं या दरमियाने तबके के लोगों के दरमियान और गरीबों के दरमियान बहुत फासले हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में यानी गरीब मुल्कों में तीसरी दुनिया के मुल्कों में तो गरीब और अमीर साथ साथ रहते हैं, हर रोज़ उनकी गलियों उनकी बाज़ारों में गुर्बत तकलीफ़ उठाती हुई दिखाई देती है और महसूस होती है। वहाँ तो ना सिर्फ ये कि ये काम बहुत आसान है कि अमलन बच्चों को बचपन ही से लोगों की तकलीफ़ें दूर करने की आदत डाली जाए, बल्कि मुश्किल भी है कि तकलीफ़ें इतनी हैं कि इंसान के हद इस्तेताअत से बहुत बड़ी हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही मुल्कों के मुतलक गालबन ऐसे ही माहौल में गालिब ने यह कहा था कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चूंकि हाजतें पूरी करना हमारे बस से बढ़ गया है इसलिए हम हाजत पूरी करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि किस किस की करे, दिल यह चाहता है कि हर एक की करे। बस जिस किसी की भी जितनी हाजत भी आप दूर कर सकते हैं खुद भी करें और बच्चों से करवाएं, और बचपन में अगर इसकी आदत पड़ जाए तो उसके नतीजे में बच्चा जो लज्जत महसूस करता है वो इस नेकी को दवाम बख्श देती है, और फिर बड़े होकर खुदामुल अहमदिया में जाकर या लजना की बड़ी उम्र को पहुंचकर फिर इन तंजीमों को उनमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बने बनाए बाखलाक अफराद कौम मुयस्सर आएंगे जो फिर बड़े बड़े काम करने के लिए अपने आप को मुस्तैद और तैयार पाएंगे। آخر پر پانچویں بات جو میں آج کے خطاب کے لیے جو میں نے چنی ہے وہ مضبوط عزم اور ہمت ہے. مضبوط عزم اور ہمت اور نرم دلی اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر یہ اکٹھے نہ ہوں تو ایسا انسان کمزور تو ہوگا, با اخلاق نہیں ہوگا. نرم دلی جب آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسا نرم دل انسان اور ایسا نرم خو انسان مشکلات کے وقت گھبرا جائے اور مصائب کا سامنا کرنے کی طاقت نہ پائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اس لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں کامل نمونہ کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ نمونہ اگرچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے حاصل کیا, مگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا مقام آیا جہاں اس خلق نے نمایاں ہو کر ایک ایسا عظیم الشان کردار ادا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ہم آپ کی مثال دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بے حد نرم خو اور نرم دل ہونے کے باوجود جب اسلام پر آپ کی خلافت کے پہلے دن ہی مصیبت کا دور پڑا ہے, مصیبت عظیم مصیبت واقع ہوئی ہے اور مشکلات کا دور شروع ہوا ہے, تو وہ شخص جو دنیا کی نظر میں اتنا نرم دل تھا, اتنا نرم خو تھا کہ معمولی سی تکلیف کے بعد سے ہی اس کے آنسو روا ہو جایا کرتے تھے, کسی کی چھوٹی سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, اتنے حیرت انگیز عزم کے ساتھ ان مشکلات کے مقابل پر کھڑا ہو گیا ہے کہ جیسے سیلاب کے سامنے کوئی عظیم الشان چٹان کھڑی ہو جاتی ہے, ایک ذرہ بھی اس کے سرکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے نرم دل سے عظمت کا ایک پہاڑ نکلتا ہوا دکھایا دنیا کو. بس نرم دلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان مشکلات کے وقت کمزور ہو یا بڑھتی ہوئی مشکلات کے سامنے ہمت ہار جائے. بچپن سے یہ خلق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے شکست نہیں کھانی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو فقرہ ہے, ایک عظیم الشان فقرہ ہے جو آپ کے اس عظیم خلق پر روشنی ڈالتا ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. بہت ہی بلند تعلیم ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خلق پر روشنی ڈالنے والا ایک بہت ہی پیارا فقرہ ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہونے والوں کی سرشت میں بھی ہرگز ناکامی کا خمیر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ عزم اور ہمت بچپن ہی سے پیدا کیے جائیں تو پیدا ہوتے ہیں. وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمتیں ہار جاتے ہیں, امتحان میں فیل ہو جائیں تو زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں, کوئی زندگی کی مراد پوری نہ ہو تو ان کا سارا فلسفہ حیات ایک زلزلے میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا بھی ہے کہ نہیں. ان کی چھوٹی سی کائنات تنکوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور معمولی سا زلزلہ بھی اس کی خاک اڑا دیتا ہے. اس لیے وہ قومیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے ہیں, عظیم الشان مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور عظیم الشان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے, جن کا مشکلات کا دور چند سالوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ صدیوں تک پھیلا ہوا ہے, ہر مشکل کو انہوں نے سر کرنا ہے, ہر مصیبت کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, ہر زوراور دشمن سے ٹکر لینی ہے اور اس کو ناکام اور نامراد کر کے دکھانا ہے. ایسی قوموں کی اولادیں اگر بچپن ہی سے عزم کی تعلیم نہ پائیں تو آئندہ نسلیں پھر اس عظیم الشان کام کو سر انجام نہیں دے سکیں گی. اس لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ جہاں نرم کلام بچے پیدا کریں, جہاں نرم دل بچے پیدا کریں, جہاں نرم خو اولاد پیدا کریں جو دوسروں کی ادنا سی تکلیف سے بھی بے چین اور بے قرار ہو جائے, और उनके दिल किसी दूसरे के दिल के गम से पिघलना शुरू हो जाएं। इसके बावजूद इस औलाद को अज़्म का पहाड़ बना दें और बुलंद हिम्मतों का एक ऐसा अजीम शान नमूना बना दें कि जिसके नतीजे में कौमें उनसे सबक हासिल करें। ये वो पांच बुनियादी अखलाक हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी तंजीमों को खसूसियत के साथ अपने तरबियती प्रोग्राम में पेश नज़र रखने चाहिए। इन पर अगर वो अपने सारे मंसूबों की बिना डाल दें और सबसे ज़्यादा तवज्जो इन अखलाक की तरफ करें तो मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा आइंदा 100 साल ही नहीं बल्कि सैकड़ों साल तक बनी नौ इंसान को पहुँचता रहेगा। क्योंकि आज की जमात अहमदिया अगर इन पांच अखलाक पर कायम हो जाए और मजबूती के साथ कायम हो जाए और उनकी औलादों के मुतलिक भी ये यकीन हो जाए कि ये भी आइंदा इन्हीं अखलाक के निगरान और मुहाफिज बनी रहेंगी और उसकी इन अखलाक की रोशनी दूसरों तक फैलाती रहेंगी और पहुंचाती रहेंगी, तो फिर मैं यकीन रखता हूं कि हम अमन की हालत में अपनी जान दे सकते हैं, सुकून के साथ अपने जान जान आफरी के सुपुर्द कर सकते हैं और यकीन रख सकते हैं कि जो अजीम शान काम हमारे सुपुर्द किए थे हमने जहाँ तक हमें तौफीक मिली उनको सर अंजाम दिया। दूसरा पहलू मुख्तसरन इबादात का पहलू है। इस सिलसिले में मैं बारहा जमात को पहले भी मुतवज्जे कर चुका हूँ कि इब्तदाई चीज़ों की तरफ बहुत ही तवज्जो देने की ज़रूरत है और उनमें सबसे इब्तदाई और सबसे अहम नमाज है। हमारी नमाजों में अभी कई किस्म के खला हैं जो बुलंदतर मनाजिल से ताल्लुक़ रखने वाले खला हैं, उनका मैं तफसील से ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको उस बुनियादी कमज़ोरी की तरफ मुतवज्जे करता हूँ कि हमारे अंदर आज की नस्लों में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, बहुत से बूढ़े ऐसे हैं जिनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत नहीं है। और ये बात हमें रोज़मर्रा नज़र आनी चाहिए और हमें इससे बेचैन हो जाना चाहिए। तंजीमें क्यों इससे बेचैन नहीं होती, तंजीमें क्यों ये कमज़ोरी नहीं देखती और क्यों खसूसियत के साथ इन बातों की तरफ मुतवज्जे नहीं होती? नमाज पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं, नमाज तर्जमे के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और नमाज का तर्जमा हर अहमदी को आना चाहिए, खा वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज का तर्जमा जानता हो और इस हद तक ये तर्जमा रवा हो कि जब वो नमाज पढ़े तो समझ कर नमाज पढ़े। इबादत के मज़मून में तो बहुत सी वसी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो अपने अंदर फिर और बहुत सी मनाजिर रखती हैं, लेकिन सबसे बुनियादी बात यही है कि हम अपनी जमात को मुकम्मल तौर पर नमाज पर कायम कर दें। किसी और नेकी की इतनी तलकीन कुरान करीम में आपको नहीं मिलेगी जितनी क़याम इबादत की तलकीन है, क़याम सलात की तलकीन है। इसलिए बनी नौ इंसान की हमदर्दी की तलकीन भी हमेशा इसके साथ वाबस्ता की गई है। बस कुरान करीम की तालीम की रूह यही है कि हम अपनी इबादात को खड़ा कर दें और अपने पाँव पर मजबूती के साथ उनको इस तरह मुस्तहकम कर दें कि कोई इब्तला, कोई जलजला, कोई मुश्किल हमारी नमाजों को गिरा ना सके। इसके लिए पहला बुनियादी कदम यही है कि हम में से हर एक शख्स नमाज व तर्जमा जानता हो और नमाज 5 वक्त पढ़ने का आदी हो, और साथ ही इसके दूसरी चीज़ के साथ मिलाने वाली ज़रूरी है कि सुबह तलावत की आदत डालें। हर शख्स जो नमाज पढ़ता है उसको ये आदत पड़ जाए कि कुछ ना कुछ तिलावत ज़रूर करे। ये बुनियाद अगर कायम हो जाए तो इसके ऊपर फिर عظیم الشان عبادات کی بنیاد عمارتیں قائم ہو سکتی ہیں, منازل نئی سے نئی بن سکتی ہیں, نئی رفعتیں عبادتوں کو حاصل ہو سکتی ہیں, مگر یہ بنیاد نہ ہو تو اوپر کی منزلیں بن ہی نہیں سکتی. اس لیے خدام الحمدیہ انصار اللہ اور لجنات کو اپنے آئندہ کے پروگراموں میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے کہ ان کی مجالس کے اندر ایک بھی فرد نہ رہے جو نماز کا ترجمہ نہ جانتا ہو اور نماز پنج وقتہ نماز پر قائم نہ ہو. باقی ساری باتیں انشاءاللہ رفتہ رفتہ سکھائی جائیں گی. میرا پروگرام یہ ہے کہ تمام مجالس پر اس پہلو سے نظر رکھوں اور ان کی رپورٹوں کو سردست مختصر بنا دوں. ان سے یہ توقع رکھوں کہ آپ لمبی تفصیلی رپورٹیں مجھے نہ کریں جن سے میں خود براہ راست گزر نہ سکوں, بلکہ مجھ تک جو آپ کام پہنچانا چاہتے ہیں وہ مختصر کر دیں, اور بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیڑ لگائے اور کتنی محنتیں کیں اور کس طرح ان درختوں کو ان پودوں کو تناور درختوں میں تبدیل کیا, مجھے صرف یہ بتا دیا کریں کہ پھل کتنے لگے. پیڑوں سے مجھے غرض نہیں ہے. تو پھلوں کے لحاظ سے ان پانچ عادات کے متعلق رپورٹ مل جائے کہ آپ نے کتنے احمدیوں میں یہ عادات راسخ کرنے میں کام کیا ہے, کتنے لوگوں نے, بچوں نے, بڑوں نے, مردوں اور عورتوں نے عہد کیا ہے کہ وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے, اور اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کاروائیاں کی ہیں, سرے دست یہ بتائیں صرف, یعنی نظر رکھنے کے لیے کیا کاروائیاں کی ہیں, عادتوں کو مزید راسخ کرنے کے لیے کیا کاروائیاں کی ہیں. اتنا حصہ بے شک مزید بھی بتا دیں جو پھلوں کی حفاظت سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے. پھل پیدا کریں, ان کی حفاظت کا انتظام کریں, اور وہ حفاظت کی جو کاروائی ہیں مختصر وہ اپنی رپورٹ میں بے شک لکھ دیا کریں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کرے کہ عرصہ زیر رپورٹ میں کتنے ایسے احمدی بچے بڑے تھے جو نماز پنج وقتہ نہیں پڑھتے تھے, جن کو آپ نے نماز پنج وقتہ کی عادت ڈالی ہے, یا کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے ایک یا دو نمازوں کی عادت ڈالی ہے. صرف یہ تعداد کافی ہے. اگلی رپورٹ میں ان کا ذکر نہ ہو بلکہ مزید جو آپ نے اس میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہو, یا اگر دو پڑھتے تھے اور تین پڑھنے لگ گئے تو ان کا ذکر ہو سکتا ہے, اور اسی طرح یہ ذکر ہو کہ کتنے ایسے احمدی تھے جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا اور ان کو آپ نے کسی حد تک ترجمہ پڑھایا ہے. اس کے بھی مختلف مراحل ہیں, کسی کو ترجمہ شروع کروا دیا گیا ہے, کسی کو ترجمہ مکمل ہو گیا ہے, تو دو حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اتنے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو اگرچہ پہلے ترجمہ نہیں جانتے تھے اور اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ترجمہ آ گیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کی طرف ساری مجالس اپنی ساری توجہ مبذول کر دیں. ان کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں سر دست وہ جاری تو رہیں گے, مگر ان کو مقابلتاً ثانوی حیثیت دیں. اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت کی عظیم الشان تعمیر کی ایسی بنیادیں قائم ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تمام دنیا میں اسلام کی عمارت کو مستحکم اور بلند تر کرنے میں عظیم الشان کارنامے سر انجام دیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.